नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। विमान ईंधन के दामों में हुई बढ़ोतरी और रुपए के अवमूल्यन की वजह से घरेलू विमानन कंपनियों के पास हवाई किराया तत्काल बढ़ाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं रह गया है। विमानन कंपनी स्पाइसजेट के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने बृहस्पतिवार को यह कहा। सिंह ने एक बयान में कहा कि परिचालन लागत वहनीय बनी रहे इसके लिए हवाई किराए में कम से कम 10 से 15 फीसदी की वृद्धि करना आवश्यक है। कोरोना वायरस महामारी के कारण मार्च 2020 में लगाए गए 2 महीने के लॉकडाउन के बाद 25 मई 2020 को जब हवाई सेवाएं बहाल हुई थी, तब सरकार ने विमान उड़ान की अवधि के आधार पर घरेलू हवाई किराए की निम्न और उच्च सीमा निर्धारित की थी। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच इस वर्ष 24 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के बाद से ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। सिंह ने कहा, जून 2021 के बाद से विमान ईंधन के दाम में 120 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है। दामों में बड़े पैमाने पर हुई ये वृद्धि वहनीय नहीं है और केंद्र तथा राज्यों की सरकारों को विमान ईंधन पर कर कम करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा के कमजोर होने से भी विमानन कंपनियों पर बहुत असर पड़ा है। पालघर जिला प्रशासन ने उर्वरकों की बिक्री में हेराफेरी के आरोप में यहां के 2 कृषि सेवा केंद्रों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। पालघर के जिलाधिकारी डॉक्टर माणिक गुरसाल ने पीटीआई भाषा को बताया कि इसके अलावा 11 ऐसे केंद्रों को कथित अनियमितताओं के मामले में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। उनके जवाब मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यूरिया की कालाबाजारी की कई शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने यहां उन सभी कृषि सेवा केंद्रों का निरीक्षण किया जो किसानों को उर्वरक बेचते हैं। अधिकारी ने बताया कि 2 केंद्र उर्वरकों की बिक्री में हेराफेरी में लिप्त पाए गए, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। उन्होंने बताया कि बाजार में उर्वरकों की कमी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। रुपया बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 15 पैसे की मजबूती के साथ 78.07 पर पहुंच गया। अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए ब्याज दरों में 0.75% 75 आधार अंक की वृद्धि की तथा इस दिशा में और कदम उठाने के संकेत दिए, जिससे रुपये को मजबूती मिली। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि घरेलू शेयर बाजार में बढ़त और विदेशी बाजारों में अमेरिकी मुद्रा के कमजोर होने से रुपया को बल मिला। हालांकि विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण रुपये की बढ़त सीमित रही। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 78.06 पर मजबूत खुला। इसके बाद कुछ गिरावट के साथ 78.07 पर आया, जो पिछले बंद भाव की तुलना में 17 पैसे की बढ़त दर्शाता है। शुरुआती सौदों में ये बेहद सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था। बुधवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 78.22 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.21% गिरकर 104.94 पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.55% बढ़कर $119.16 प्रति बैरल के भाव पर था। शेयर बाजार के अस्थाई आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों FII ने बुधवार को शुद्ध रूप से 3,531.15 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। मजबूत वैश्विक रुझान के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े शेयर में तेजी के चलते प्रमुख शेयर बाजारों में बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार के दौरान बढ़त देखी गई। इससे पहले 4 दिन तक शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई थी। इस दौरान 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 601.11 अंक बढ़कर 53,142.50 पर कारोबार कर रहा था। दूसरी ओर व्यापक NSE निफ्टी 171 अंक चढ़कर 15,883.15 पर पहुंच गया। सेंसेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति, ICICI बैंक, ITC, HDFC और भारतीय स्टेट बैंक बढ़त दर्ज करने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल थे। दूसरी ओर पावर ग्रिड, भारतीय एयरटेल और नेस्ले में गिरावट हुई। अन्य एशियाई बाजारों में टोक्यो, सियोल और शंघाई के बाजार हरे रंग में थे। हांगकांग के बाजार मामूली नुकसान में कारोबार कर रहे थे। इससे पहले बुधवार को 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 152.18 अंक यानी 0.29% की गिरावट के साथ 52,541.39 अंक पर बंद हुआ था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 39.95 अंक यानी 0.25% टूटकर 15,692.15 अंक पर बंद हुआ था। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.68% की बढ़त के साथ $119.32 प्रति बैरल पर आ गया। शेयर बाजार के स्थायी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बुधवार को शुद्ध रूप से 3,531.15 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। देश के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप की वैल्यूएशन में नवंबर अप्रैल के बीच करीब 88% का इजाफा हुआ। वैल्यूएशन में वृद्धि तब हुई जब रूस, यूक्रेन और दुनिया में महंगाई के कारण तेजी के अन्य कंपनियों के वैल्यूएशन में गिरावट देखने को मिली है। एशिया और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस की बात करें तो इस दौरान उसकी वैल्यूएशन में भी 13.4% की वृद्धि हुई, जबकि रिलायंस के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी TCS की वैल्यूएशन में कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिला। वहीं देश की अन्य बड़ी कंपनियों जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक और इन्फोसिस में 9% की गिरावट हुई है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।